ऐसे हालात में जब उसने अपने दरवाजे खोले हैं तमाम इमिग्रेंट्स के लिए जिनके अपने अपने मुल्कों में रहना मुश्किल था, मुसलमान मुल्कों के अंदर, ख्वाह वो तुर्की के अंदर हों, ख्वाह वो शाम के अंदर हों, ख्वाह वो इराक के अंदर हों, और जहाँ पे भी सियासी और समाजी मुश्किल लोगों को पेश आई हैं, तो यूरोप ने अपने दरवाजे खोले हैं। तो क्या मुश्किल हैं, क्या लोगों को एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, इमिग्रेंट्स को क्या इश्यूज़ हो रही हैं, और इस तरह के मसाइल बुनियादी तौर पे क्या एक ऐसी तस्वीर पैदा कर देंगे जिसके तनाजुर में फिर ख़ास तौर पे नए इमिग्रेंट्स के लिए या मौजूद मुस्लिम इमिग्रेंट्स के लिए हालात कुछ ज़्यादा साजगार नहीं होंगे। खालिद हमीद फारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, यूरोप में बेस्ड हैं ब्रसल्स में। चौधरी नुमान जफर एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के और रिसर्च फेलो रह चुके हैं हेडसन इंस्टीट्यूट के साथ, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और किरण नाजिश फ्री लांसर हैं, रिसर्चर हैं, न्यू अमेरिकन थिंक टैंक के साथ वाबस्ता हैं, और इसके अलावा अमेरिका की जो टॉप मीडिया है न्यूयॉर्क टाइम्स हो या दीगर कुछ चैनल्स हों उनको वो कंट्रीब्यूट करती हैं, वो हमारे साथ होंगी। तुर्की में इस वक्त वो मौजूद हैं, कुछ देर बाद वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। खालिद हमीद फारूकी साहब बहुत शुक्रिया आपका। पेरिस में 8 दिनों के दौरान तीसरा हमला है और इसके जो डांडे हैं वो या तो दाइश से मिल रहे हैं या अगर बराह रास्त नहीं हैं तो इनडायरेक्टली वो इससे रबते में हैं या मुतासर हैं उसके लिटरेचर से, और तीसरा जो कामन फैक्टर है उसमें वो यही है कि वो इमिग्रेंट हैं या इमिग्रेंट बैकग्राउंड से आए हैं। किस तरह के खतरात पैदा हो रही हैं यूरोप के लिए, स्पेशली दाइश के हाथों?
ये जो म्यूनिख का हालिया वाकया है इसका ताल्लुक तो दाइश से नहीं है और पुलिस ने इसको कंफर्म किया है। अलबत्ता ये ऑब्सेस से ये साहब मास शूटिंग से एक इनकी इंस्पिरेशन थी और उससे ये मुतासिर थे कि एक मास शूटिंग इन्होंने की और जो मेंटली स्टेबल ना होने की वजह से भी। लेकिन जो सूरत हाल जाहिर की जिस तरीके से रैम्पेज हुआ म्यूनिख में भी, इससे कबल भी जो नीस में वाकया हुआ और वो तो जाहिर है कि दाइश से बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी थे, तो ये सारे जो वाकयात जाहिर है यूरोप में हो रहे हैं इसके नतीजे में इमिग्रेंट की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होती जा रही है और मजीद मुश्किल होती जाएगी। ये ऐसे ही एक तो यह है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक दफा कि इससे बहुत ज्यादा महदूद हो जाएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटी इमिग्रेंट की, और जर्नल जो एक गुस्सा और एक इम्तियाज पाया जाता है इमिग्रेंट की तरफ। अब इससे कबल जो अफगान बाशिंदे ने कुल्हाड़ा लेकर लोगों पर हमला करने की कोशिश की वो भी म्यूनिख से बहुत ज्यादा करीब बवेरिया के अंदर ही, और इसके बाद जो है वो ईरानी नजादों के वो बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड जर्मन सोसाइटी में थे, लेकिन जब ये नाम आता है कि अफगान और ईरानी ओरिजिन उसके साथ ही यहाँ सोसाइटी में ये होता है कि ये वही लोग हैं जो बाहर से आए, उन्हें यहाँ अच्छी जिंदगी मुहैया की गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस सोसाइटी से किसी किस्म की वफा नहीं की और इस सोसाइटी में ये इस सोसाइटी की तबाही की ये लोग जिम्मेदार हैं,
तबाही की ये जिम्मेदार हैं। दूसरा ये कि अब से कि आज एक मीटिंग भी थी जो उन्होंने फौरी तौर पे तो कैंसिल की है जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल ने, लेकिन जाहिर है सिक्योरिटी के इशू पे थी, अब इस पे मजीद फोकस होगा, तो किन चीज़ों पे उनकी अब तवज्जो हो सकती है? यानी एक तरफ तो जर्मनी जिसने अपने दरवाजे खोले, फ्रांस, सारे यूरोप के मुल्क, क्या वो अब उनकी तरजीहात क्या हो सकती हैं अपने मुल्कों को सिक्योर करने के लिए?
देखिए ये तो जिस किस्म के कानून बनाए जा रहे हैं गुज़िश्ता हफ्ते यूरोपीय दारुल हुकूमत में भी जो कानून आए हैं जिसके नतीजे में हर पुलिस वाले के पास एक छोटा सा कैमरा होगा, वो हर वक्त सर्वेलेंस कर सकेगा और रिकॉर्ड कर सकेगा किसी भी किस्म के गैर मुतवक्का अमल को, और इसी के साथ इस किस्म की ड्रेकोनियन पावर्स पुलिस वालों को और आम पुलिस को मुहैया की जाएंगी कि वो बर वक्त लोगों को गिरफ्तार कर सकें, पकड़ सकें और इंटरवेंशन कर सकें। तो ये सारे कानून जाहिर है कि शहरी आज़ादियों की जिद पर हैं और इस किस्म की शहरी आज़ादियाँ बिलखसूस मकामी लोगों को तो इस बात की इतनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन फाइनली ये मार्जिन पर रहने वाले लोग जो ओरिजिनली उन मुल्कों से नहीं होते उन पर इसकी का जो है नजला गिरता है, और यहाँ जो कानून होंगे, अब जर्मनी में पहले ही बहुत ज्यादा इंटरनेट सर्विलेंस के कानून हैं, इसी तरह के ड्रेकोनियन लॉज 5 साल पहले ही इंट्रोड्यूस किए जा सकें, जो कुछ यूरोप में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है सिक्योरिटी की, इससे ज्यादा सिक्योरिटी क्या की जा सकती है? सवाल यह है कि किस तरीके से लोगों के जहन में जो कुछ जिस तरीके से पेनिट्रेट किया है इंतहा पसंद फलसफे ने, उसे किस तरह रोका जाए। और इसका सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी जा रही है वो इंटरनेट सर्वेलेंस पे दी जा रही है, और इंटरनेट के जरिए जाहिर है कि ये इंतहा पसंदी का फलसफा फैल रहा है, उसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा जोर है इस वक्त।
सही, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं। सिक्योरिटी इट सेल्फ इवॉल्व करना, बहुत हवालों से वो जो मकामी लोग हैं उनके अंदर भी एक अनरेस्ट का या कहना चाहिए कि वो सबब बनती है अदम इत्मीनान का। किरण नाजेश ने हमें ज्वाइन किया है, फ्रीलांसर हैं, रिसर्चर हैं, न्यू अमेरिकन थिंक टैंक के साथ वाबस्ता हैं, और इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी लीडिंग अमेरिका के अंदर जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको वो कंट्रीब्यूट करती हैं। इस वक्त तुर्की के अंदर मौजूद हैं और इस्लाम ये जो मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी लेड बाई दाइश या जिसका सामना यूरोप को है, उस पर उनकी गहरी नज़र है। नाजिर साहब का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अभी हम इस सेगमेंट में बात करें म्यूनिक हमले में, जिसमें एक नौजवान जिसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर ईरान के साथ था, जर्मन नजाद है, 18 साल का है, उसने किया। अगरचे ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जा रहा कि इसका ताल्लुक दाइश के साथ है, लेकिन इन बुनियादों पे इन्वेस्टिगेशन जरूर हो रही है कि कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली उसके फलसफे से तो मुतासिर नहीं था। आपको ख्याल में, आपके ख्याल में ये जो म्यूनिख का हमला है एक नौजवान की तरफ से, ये जाती रिएक्शन है, उसकी ज़हनी सेहत का उसका शाखसाना है, उसकी रीजंस हैं, या आपको लगता है कि दाइश जो जिसको लोनली वुल्फ कहते हैं, तन्हा जो नौजवान बैठे हैं जिनको तन्हाई का सामना है, उनको हदफ बनाती हुई नजर आ रही है कि वो अटैक करें अपने अपने इलाकों के अंदर?
जी बिल्कुल, ये बहुत तीन चीजें हैं। एक तो ये जो आपने अभी कहा लोन वुल्फ का जो फिनोमेना है, ये ऑब्वियसली बात है कि दिस हमने पिछले काफी इंसिडेंट्स में देखा है कि आईसिस ने ये यूटिलाइज किया है, इट इज टू द बेनिफिट ऑफ आईसिस। अभी अभी कुछ ही घंटे पहले एक्चुअली आईसिस ने जो अपना लेटेस्ट मैगजीन जो उनका आफाक है जो वो पब्लिश करते हैं उसके अंदर उन्होंने क्लेम किया है कि ये उन्हीं का दे हैव रिटन समथिंग अबाउट द अटैक दैट इट वाज एसोसिएटेड टू आईसिस, अफगानिस्तान का अटैक भी उन्होंने क्लेम किया है। एनीहाउ जो ये यू नो द चाइल्ड जो टीनेजर जो था जिसने अटैक किया है यूरोप में, ही वाज कंसिडर्ड टू बी सीरियल किलर, और उन्होंने अपनी तरफ मतलब जो रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ सिक्योरिटी रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें ये रिवील हुआ है कि जो है वो जो बच्चा था वो खुद ही अटैक करने के लिए उसको शौक था ये करने के लिए।
एक ऐसी किताब भी पढ़ रहा था जिसमें उसने मुताला किया कि स्टूडेंट,
ये अपॉर्चुनिटी सामने आती है कि आईसिस के कितनी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज आईसिस के पास हैं कि वो कोई भी अटैक क्लेम कर सकती है, और ये भी कि सिंस ये अटैक्स होते रहे हैं इस तरह से जितने भी लोग जो जिनके साथ कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, अब इसको ये भी नहीं पता कि हम किस तरीके से इसको हम लोग स्टेरियोटाइप तो नहीं कर सकते कि किसी की यू नो स्टेरियोटाइप करना अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये है कि इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज खुली हैं ऐसे लोगों के लिए जो खुद कुछ कर नहीं सकते, उनके लेकिन उनके पास एक बैनर है जिस बैनर के अंडर वो ये इस तरह के अटैक्स कैरी आउट कर सकते हैं।
अच्छा, मैं किरण एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें वो ये बता रहे थे कि खास तौर पे दाइश का जो इंतहाई खतरनाक अप्रोच है वो ये है कि वो अमूमन ऐसे लोगों को हदफ बनाती है जो मेंटली स्टेबल ना हों, जहाँ पे उनको फैमिली के अंदर अनरेस्ट हो। सेकेंडली वो ये कहते हैं कि जी सिंपलेस्ट अटैक्स की जानिब उनको वो तरकीब देते हैं या उनको ट्रेन करते हैं, यानी जो वेपन उनके लिए आसान है इस्तेमाल करना वो उसी जाने, पर फिर ये कि अपने अपने घरों के करीब जहां भी वो हदफ बना सकते हैं, तो ये बड़ा वो एक कहना चाहिए कि थ्रेटनिंग और खतरनाक एक रुझान जो है वो सामने आ रहा है। एक तो इस बारे में बताइएगा, और दूसरा ये कि यूरोप जाहिर है जिसको अगर इस तरह मुतवातिर हमलों का सामना रहेगा, 8 दिन में ये तीसरा है, तो वो इमिग्रेंट्स के बारे में, तारकीन वतन के बारे में, खासतौर पे जो मुस्लिम दुनिया से आए हुए तारकीन वतन के बारे में कब तक फ्लेक्सिबल रहेगा, या उसे कोई एक बड़ी वाजे लाइन खींचनी पड़ जाएगी?
आईसिस को लाइन खींचनी
नहीं, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज को, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को। जी हम
पहली बात तो ये कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आईसिस के जो अटैक्स हैं वो यूबिकिटस हो गए, क्योंकि वो कोई भी मतलब वो इनकरेज करते हैं कि आपके पास जो भी है आप जो भी आपके पास वेपन्स हैं आप वो यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो अपने फॉलोअर्स को ये अर्ज करते हैं कि आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. जिहादिस्ट जो आईसिस से रिलेटेड हैं उनकी यूजुअली जो जहाँ तक उनकी ट्रेनिंग का सवाल है तो उनको जो ट्रेन किया जाता है वो इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि आप शूट टू किल.
सही.
ठीक है, इसका मतलब है कि यानी कि या तो अगर आप शूट कर रहे हैं तो इस तरह से शूट करें कि यू नो यू क्रिएट मोर डेडली, यू नो दैट द अटैक इज मोर डेडली. एंड द सेकंड थिंग वो ये ट्रेन करते हैं कि जो अगर जो लोग अपने आप को ब्लो अप कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे ब्लो अप करें कि जहां पर ज्यादा मकदार में
लोग मौजूद हैं,
यू नो अटैक. जी
सही.
तो यू नो आई मीन उनकी अपनी ट्रेनिंग तो यह है, लेकिन ऐसा भी सामने आ रहा है कि जितने भी उनके जो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने उनसे लिंक्स भी एस्टैब्लिश नहीं किए वो कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं. आई थिंक के शुरू से लेकर शुरू से अगर आप कंपेयर करें, शुरू में जो आईसिस की जो पब्लिक स्टेटमेंट्स थी टू देयर फॉलोअर्स वो डिफरेंट थी, और अब जो है वो हर अटैक जो क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं उससे ये सामने आता है कि दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर यू नो the opportunity exactly. for anybody who wants to follow them. That is very, very dangerous because that means ke ab koi bhi kahin par bhi kar sakta hai.
अभी हम अफगानिस्तान के ऊपर आएंगे. नाज़िश हमारे साथ रहेगा क्योंकि हमारा अगला सेगमेंट अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत डेडलीस्ट अटैक है, बड़ा खूनी वाक्या वहाँ पे पेश आया. चौधरी नोमान जफर ने हमें ज्वाइन किया, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के, सऊदी अरेबिया में बेस्ड हैं लेकिन यहाँ पे रिसर्च फेलो रह चुके हैं हडसन इंस्टीट्यूट के साथ. नोमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, होपफुली आपकी टेलीफोन लाइन दुरुस्त होगी और हमें रिपीट नहीं सुनना होगा. अपना एनालिसिस दीजिएगा, यूरोप के अंदर 8 दिनों में तीसरा एक कहना चाहिए कि खूनी वाकया. आपको पता है नीस में दर्जनों अफराद हलाक हुए, आज 9 अफराद जर्मनी में मार दिए गए, इससे पहले जर्मनी के एक और शहर में कुल्हाड़ी वाला एक हमलावर था. क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है यूरोप की सिक्योरिटी के लिए, क्या चैलेंजेस उभर के सामने आ रहे हैं? जी नुमान जफर साहब.
जी हेलो. हाँ जी, देखिए बात यह है कि यूरोप में बहुत सारे मुहरिकात इस वक्त मौजूद हैं जो मुख्तलिफ अवामिल काम भी वहां पे कर रहे हैं. एक तो महाजरीन का जो इनफ्लो था यूरोप के अंदर वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने वहां के सोशल चेंजेस जो वहां पे मुरतब की हैं. अब ये जो आज जो वाकया हुआ है जो ये जो जर्मनी वाला, इसमें जो जहां तक हमें खबर पहुंची है वो ये है कि जो सफेद नस्ल परस्त लोग हैं उन्होंने उनकी तरफ से हमला किया गया है, जिस 5 साल पहले जो नॉर्वे में हमला किया गया था. तो एक तरह से एक रिजेंटमेंट वहां पे मौजूद है, कुछ एलिमेंट्स कुछ हल्के ये महसूस करते हैं कि अगर इस तरह इनफ्लो होता रहा माजरीन का या दूसरे उसका तो उनके उनके आजादी पर या उनके राइट्स के ऊपर कुछ जो है नजर पड़ सकती है. तो एक तो ये है. उसके बाद दूसरा एक फैक्टर है जो कि होम ग्रोन टेररिज्म का था, वो इस वाक्य में खास तौर पर इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है जो कि यूरोप में और वहां पे मौजूद है. अब इस हमले के हवाले से दो चीजें आ रही थी कि इनिशियली जब खबरें आनी शुरू हुई तो पता चला कि जी दाइश ने या दौलत इस्लामिया ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है. उसके बाद फिर जो खबर आई तो वो कुछ और आ रही थी. बहरहाल अब तक कन्फर्म नहीं है ये, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि वहां का जो ये जो सफेद नस्ल प्रस्त लोग हैं उन्होंने इसकी उसने वो वाजे हो गया कि उनकी तरफ से हमला किया गया था. तो मेरा ख्याल है कि यहाँ के पॉलिटिशियंस को और दूसरे लोगों को बैठ के अब सोशल रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है ताकि इनको करीब लाया जाए, एक डायलॉग स्टार्ट किया जाए इनके दरमियान में ताकि उनको भी ये बताया जाए कि जी अगर कोई बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनके जो राइट्स हैं उन पर रद्द नहीं पड़ेगी और वो मिलके एक तरह से रह सकते हैं. तो मेरा ख्याल है डायलॉग जितनी जल्दी शुरू हो जाएगा, जिस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग जितनी जल्दी शुरू हो जाएगी, इस तरह के वाकयात को हम रोक सकते हैं.
जी चौधरी नुमान जफर साहब हमारे साथ रहेगा, किरण आप भी हमारे साथ रहेगा, खालिद मीर फारूकी साहब आप के हम मशहूर हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने हमें अपना एनालिसिस भी दिया, अपडेट्स भी दी. चंद सेकंड की हम सामीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अफगानिस्तान के अंदर हमला जिसमें कम से कम 61 अफराद के हलाक होने की इत्तला मिल रही हैं इस पे बात करते हैं.
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر عبد الرخ، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے افغانستان کے اندر اندوناک واقعہ، انتہائی دہشت گردی کا یہ واقعہ جس میں کابل ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد جو مظاہرہ کر رہے تھے کابل حکومت سے اس مطالبے کے ساتھ کہ جو راہداری بجلی کی ہے یا توانائی کے منصوبوں کی جو راہداری ہے اس کے روٹ تبدیل کیے جائیں اور ان علاقوں سے گزارے جائے جہاں پہ ان کی اکثریت ہے، اور اس مظاہرے کے درمیان جو ہے دھماکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بڑی پیمانے پہ ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں، 61 افراد اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، 150 سے زائد بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس واقعے میں یا ان دھماکوں کے اندر زخمی ہو چکے ہیں، ہزارہ کمیونٹی اس سے پہلے بھی حتیٰ کہ اگر وہ پاکستان کے علاقے میں ہیں تو بدقسمتی سے اس نوعیت کے دہشت گرد حملوں کا وہ نشانہ رہی ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کرنے کا اعلان کیا ہے اپنی ایک ویب سائٹ کے اوپر، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حملے اس نے کرائے ہیں، اور دوسری جانب طالبان نے اس سے لا تعلقی ظاہر کی ہے، طالبان کے ترجمان کا بیان ہمارے سامنے آیا ہوا ہے ذبیح اللہ مجاہد کا، ان کا کہنا تھا کہ اس حملے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو افغانستان کے اندر بھی جو داعش کے خطرات ہیں اور پھر ظاہر مختلف ڈائمینشنز ہیں عسکریت پسندی کی، ایک طرف طالبان کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف اس نوعیت کے داعش کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، افغان حکومت کیا کرے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب ظاہر انٹرنیشنل جو فورسز ہیں وہاں پہ ان کی موجودگی اس کو اگرچہ ریٹین کیا جا رہا ہے لیکن سیکیورٹی کے چیلنجز جو ہیں وہ بظاہر بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ انالیسس کریں گے، چودھری نعمان ظفر ہمارے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ کرن نازش نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے، اور طاہر خان صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور افغانستان کے اندر ملٹنسی ہو یا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سورس پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روح اللہ امین کابل بیسڈ جرنلسٹ ہیں، وہ ہمیں کچھ اپڈیٹس بھی دے سکیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ کرن آپ بتائیے گا، داعش کا جو فینومینا ہے وہ اس ریجن کے اندر پاکستان افغانستان کے اندر اور خاص طور پہ افغانستان کی جو عسکریت پسندی یا ملٹنسی ہے اس کو وہ کس حد تک ایک مزید کمپلیکس سچویشن بنا رہی ہے، اور کیا چیلنجز وہ پیدا کر رہی ہے حکومت کے لیے بھی اور پوری سیکیورٹی کے لیے؟
ایکچولی آئی تھنک کہ آئیسس جو ہے داعش کا جو نام ہے افغانستان میں اتنا زیادہ کانسنٹریٹڈ نہیں ہے جتنے اور دوسرے گروپس ہیں، تھوڑا ان کے فائٹرز کی جو تعداد ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، کافی کریک ڈاؤنز بھی ہوئے جب سے رپورٹس آنا شروع ہوئے 2014 سے جب تھوڑی بہت رپورٹس آئی تھیں، اور اس کے بعد بہت سارے رومرز بھی ہوئے کہ داعش جو ہے وہ گرو ہو رہا ہے، اور جب بھی ایسا ہوا ہے افغان فورسز نے ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیسس جو ہے وہ دونوں طرف سے، افغان فورسز کی طرف سے، افغان گورنمنٹ کی طرف سے بھی، ملٹری کی طرف سے بھی، اور دوسرے جو ٹیررسٹ گروپس ہیں افغانستان میں ان کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے آئیسس کو پریشر ہے، کیونکہ جو فار ایگزامپل طالبان ہیں، آپ کو پتا ہے کہ طالبان کا اپنا ٹرف ہے افغانستان میں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور آئے اور اس ٹرف کو لینے کی کوشش کرے، تو طالبان کی طرف سے بھی کافی ریزسٹنس ہے۔ تو آئیسس اگر جو اب تک تو یہی ہوا ہے کہ آئیسس نے اگر گرو کرنے کی کوشش کی بھی ہے یا اگر کوئی سیڈز یو نو شروع ہوئے بھی ہیں، کوئی پلانٹیشن شروع بھی ہوئی ہے آئیسس کی، وہ سکسیزفل نہیں ہوئی کیونکہ ریزسٹنس جو ہے وہ دونوں طرف سے زیادہ ہے۔ لیکن پھر یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ آئیسس کی جو کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے چار فائٹرز کے ساتھ بھی کافی ڈیمیج کر سکتے ہیں، ان کی کیپیسٹی یہ ہے کہ ضروری مطلب طالبان اور القاعدہ اور جو دوسرے گروپس ہیں ان سے ڈفرینٹ اس لیے کیونکہ آئیسس فائٹرز جو ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے کسی ایک کسی ایک سسٹم یا ہائرارکی کو فالو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی جتنے بھی جو ڈسگرنٹلڈ فائٹرز ہیں طالبان میں جن کو فار ایگزامپل اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی ڈسکشن کر
سکتے ہیں، لیکن اس پیمانے کے حملے کے لیے ایک بڑی کوآرڈینیشن اور پلاننگ تو نظر آتی ہے نا، جس کے اندر ان کو میٹیریل سپورٹ ہے، لاجسٹک سپورٹ ہے، کیونکہ بہت بڑا یہ حملہ ہے۔ تو دیٹ مینز
پہلے سے دیکھیں نا کہ اگر جو فائٹرز پہلے سے کسی اور گروپ میں کام کرتے ہیں یا کر چکے ہیں، ان کے پاس جو ریسورسز ہیں، ریسورسز یوز کرنا میرے خیال سے اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ جو فائٹرز گئے تھے یہ پروٹیسٹرز کے ساتھ گئے تھے، دے وینٹ ایز پروٹیسٹرز، یو نو، تو یہ مطلب یہ وہی ٹیکنیک ہوئی نا کہ آپ اپنی اسی آپ پبلک ریسورس بھی یوز کر سکتے ہیں، اور آئیسس کے پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں کہ وہ پبلک یوز اور ریسورس بھی یوز کر سکتے ہیں اور وہ ڈسگائز کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اپنا جو ہے وہ شیپ بدل سکتے ہیں، اور وہاں کے جو جیسے اگر کوئی طالبان کے، ابھی تو یہ سامنے نہیں آیا کہ ایگزیکٹلی کون تھے یہ جو فائٹرز تھے، یہ سامنے نہیں آیا کیونکہ آئیسس نے کلیم کیا کہ ہمارے لوگ تھے، ہم نے بھیجے تھے۔ तो ये सामने नहीं आ पा रहा कि वो एक्चुअली कौन थे. लेकिन अगर मतलब रिसोर्स की जहाँ तक बात होती है तो मेरे जहन में यही आता है कि ये disgruntled fighters भी हो सकते हैं जो they were not getting along with the other groups that are already there.
नाज़िश हमारे साथ रहेगा. चौधरी नुमान जफर, आपका एनालिसिस. एक तो नाज़िश ने जो बात की है कि ये उसकी इतनी शायद प्रेजेंस ना हो उस रीजन के अंदर, लेकिन वो हमले करने की सलाहियत इसलिए लगती हैं कि जो एक्सपीरियंस मिलिटेंट हैं बाकी ग्रुपों को अगर छोड़ के वो उसके साथ एफिलिएट हो रहे हैं तो वो अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं. एक तो ये बताइएगा, और दूसरा ये कि इस फिनोमेना पे बड़ी बहस हुई है कि उस रीजन में ये ग्रुप है या नहीं, क्योंकि बुनियादी इसके जो मकासद नज़र आते थे उसके अंदर भी कोई एक्सपेंशन नहीं थी, लेकिन एक बड़ी टेरर, एक बड़ी दहशत पैदा कर रहा है ये ग्रुप. अगर हम देखें पिछले 24 घंटों में दावे तो दोनों तरफ से उसके आए हैं ना, तो कि वो यहाँ पे भी मुलव्वस है, पेरिस के अंदर, नीस के अंदर भी मुलव्वस है, काबुल के अंदर भी. तो ये बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि एरिया है, रीजन है जिसको वो अफेक्ट करती हुई नज़र आती है तंजीम.
देखें ये जो सुइसाइडल अटैक का फिनोमेना जो है, मतलब ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं होती. ये जो टेररिज्म हमारे सामने आया है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई है. स्लीपर सेल का एक कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर के जी वो स्लीपर सेल ऐसे लोग होते हैं कि जो रोजमर्रा अपना काम कर रहे होते हैं, आम लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन जब उनको ऊपर से ऑर्डर मिलता है तो जाके सुइसाइडल अटैक कर देते हैं या जो भी उन्होंने उनसे कार्रवाई करवाई जाती है वो अपने कर लेते हैं. तो ये तो एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसके लिए बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और मजबूत ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं होती. कोई भी आप एक ऐसे बंदे को या ऐसे ग्रुप को पकड़ लेते हैं जो सोसाइटी से तंग होता है या इनजस्टिस की वजह से जो है ना वो बागी हुए होते हैं, और उनसे आप अपनी कार्रवाई करवा लेते हैं. पहली तो ये चीज है, और वो आपको पाकिस्तान में भी मिलेगी, वो आपको यहाँ पे भी मिल, अपना अफगानिस्तान में भी मिल रही है, और वो आपको अपना मिडल ईस्ट के अंदर भी आपको चीजें नजर आती है. अच्छा, अब मसला है कि ये अपना अफगानिस्तान का जो सूरत हाल ये है कि वहां पे देखें, बार बार हम लोग इस चीज के ऊपर बात करते रहते हैं कि एक तो एक खला है, गवर्नेंस उस तरह की नहीं है, गवर्नमेंट की रिट पूरे अफगानिस्तान में नहीं है. जिस जिस जगह के ऊपर उनको खला नजर आता है दहशतगर्दों को, वो अपना अटैक करते हैं, वो कभी दाइश की शक्ल में अटैक कर देते हैं या फिर किसी और ऐसे ग्रुप की शक्ल में अटैक कर देते हैं. अब मसला एक और भी आ रहा था कि पिछले दिनों जब हम ये वाला जो अटैक है, इसकी कुछ डायमेंशन और भी बहुत सारी हैं. ये कुछ ज्यादा सेंसिटिव इसलिए भी है क्योंकि देखें, ये जो हमारे हजारा बिरादरी है, ये हमारे क्वेटा में भी बहुत सारे लोग बलोचिस्तान में भी रहते हैं, उसमें भी जब हमले होते थे तो वहां पे शिया सुन्नी का एक फैक्टर बहुत ज्यादा सेक्टेरियन फैक्टर सामने आ जाता था. इसमें खाली ये नहीं है कि प्रोटेस्टर्स पे उनपे अटैक हो गया, इसमें एक और भी जो डायरेक्शन निकलती है, डायमेंशन निकलती है, वो सेक्टेरियन भी है. एक सेक्टेरियन चीज को हवा देने के लिए भी ये मामला अटैक किया जा सकता है. अच्छा, अब मसला ये है कि ये हमारे जो 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 सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पे काबुल की, उनके पास क्या स्ट्रेटेजी है. तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जो हम कहेंगे कुछ स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि जो पिछले दिनों तालिबान के साथ इनकी बातचीत शुरू हुई थी तो जिसको सपोर्ट किया जा रहा था वेस्टर्न पावर्स की तरफ से भी, वो अचानक एक हॉल्ट के ऊपर आ गई है. क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि अगर तालिबान जो जो जो, जो कंस्ट्रक्टिव जिनकी अप्रोच है उनके साथ बात करके टेबल के ऊपर ला के जब बात ये करेंगे तो फिर इस तरह के एलिमेंट्स को हम मार्जिनलाइज कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं, और इनको फिर स्पॉट करके इनको इनके अंदर जो स्पॉयलर्स हैं उनको खत्म किया जा सकता है, और जो लोग स्ट्रीमलाइन में आना चाहते हैं उनको स्ट्रीमलाइन में ला के अपना प्रोसेस जो है ना स्टार्ट किया जा सकता है. मेरा ख्याल है कि काबुल जो हुकूमत है अभी भी कन्फ्रंटेशन पे ज्यादा तवज्जो देती है. देखिए अभी ये अटैक हुआ था तो कुछ घंटे के बाद अतला आ गई के जी जो उनके एग्जेक्टिव है, चीफ एग्जेक्टिव है अब्दुल्ला, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया. तो मेरा ख्याल है इस तरह की चीजों से ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट एक दूसरे का खराब होता है. कॉन्फिडेंस इनको बिल्ड करना चाहिए पाकिस्तान के साथ. एक छोटा सा धमाका भी हो तो फौरन ये लोग प्रिज्यूम कर लें अगर कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है या कोई दूसरा मुल्क इन्वॉल्व है, तो प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए. अब ये लोग अपनी नेशन बिल्डिंग के फेज में है तो अभी इनको तो हेल्प की जरूरत है हर तरफ से, वो बेशक इंडिया की तरफ से आए, बेशक पाकिस्तान की तरफ से आए, लेकिन इक्वालिटी कर रखते हुए इनको अपने तालुकात इस्तवार करने हैं, किसी एक मुल्क के ऊपर
इंसार नहीं करना है. बहुत शुक्रिया चौधरी नुमान जफर, आपने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, फॉर्मर रिसर्च फेलो विद हडसन इंस्टीट्यूट, आपका बेहद शुक्रिया. हमें ज्वाइन किया ताहिर खान साहब ने, सीनियर साफी हैं, तजिया कार हैं, अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन हो, अफगानिस्तान के अंदर मिलिटेंसी हो, اور بارڈر کی سچویشن ہے اس پہ ان کی گہری نظر ہے. خان صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم اس کو وائڈ اپ کرنے کے قریب ہیں آپ سے جب ہمارا رابطہ ہوا ہے. ایک تو یہ جو تازہ ترین دہشت گردی کا واقعات ہیں, دو دھماکے ہوئے ہیں, حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائڈل تھے, 61 افراد کی ہلاکت ہے, داعش ذمہ داری کا دعویٰ کر رہی ہے, ان کا دعویٰ کس حد تک درست ہو سکتا ہے ایک بات, اور دوسرا نعمان نے جو پہلو اٹھایا ہے کہ افغان یا طالبان انسرجنسی کی تو سمجھ آتی ہے, پولیٹیکل موٹیوز بھی سامنے آتے ہیں اس کے, لیکن یہ داعش کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا مقصد کیا ہے اس ریجن کے اندر متحرک ہو کے, وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ کیا واقعتاً اگر طالبان افغان طالبان کنیکٹ ہوتے ہیں, کسی مذاکرات کے عمل کا حصہ بنتے ہیں, تو پھر ان کو آئسولیٹ کرنا, ان کو الگ کرنا داعش کو یا اس سے وابستہ لوگوں کو آسان ہوگا, اور اس نوعیت کی ملٹنسی کو ڈیل کرنا آسان ہوگا؟
سب سے پہلے تو آپ کے سوال کے جو پہلا حصہ ہے کہ داعش خطے میں کیا کر رہی ہے اور کیسے, اصل میں آپ ہوگا کہ وہ سب سے پہلے اس ریجن میں افغانستان میں داعش کا جب سب سے پہلے جو ایک یا ملیٹنٹ لیڈر مسلم دوست شامل ہوا افغان, اس کے بعد پھر ایک اور طالبان کے رہنما تھے عبدالرؤف, وہ شامل ہوئے جو دونوں میں مارے گئے.
صحیح.
اس کے بعد اصل میں جو اصل جو داعش کی بنیاد رکھتے میں یا خراسان جس کو کہتے ہیں یا افغانستان پاکستان, تو جو تحریک طالبان پاکستان میں جو شدت پسند ہے ان کے اندر بھی اور پھر بنیادی طور پہ جس کا آج کے واقعے سے ہم تھوڑا سا علم بھی کر سکتے ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے وہ لوگ جو زیادہ تر حریت کے حامی تھے یا اہل کشیوں کے خلاف تھے, وہ لوگ اپنی پالیسیوں کو اس وقت تھوڑے سے طالبان کے اندر ریسنی تھی, اس وجہ سے ان کو ایک موقع ملا کہ داعش اس وقت نئی نئی آئی تھی اور ان کے لیے ایک راستہ ان کی نظر میں شاید وہ مناسب نظریات زیادہ اس دیر سے. سب سے اہم چیز ہے کابل میں دھماکہ جو کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے, لیکن افغان آفیشل نے بھی کہا ہے کہ اس کے پیچھے داعش ہے, کیونکہ افغان طالبان نے بیان جاری کیا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
صحیح.
تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ طالبان داعش نے افغانستان میں بہت ایک منظم طریقے سے میری نظر میں, کیونکہ ان کا فوکس تھا شروع میں ریکروٹمنٹ پہ, اور انہوں نے صرف ایک ان ضلع میں یا ان ایریاز میں مشرقی صوبے ننگرہار میں اپنی وہاں سے بنیاد رکھی اپنے تحریک کی, آہستہ آہستہ انہوں نے حملوں بعد انہوں نے بڑے منصوبہ سے کابل میں آج جو ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا ہے, یعنی میری نظر میں ان کی وہ جو پلان تھا جو منصوبہ تھا کہ انہوں نے شروع کرنا ہے اور پھر ننگرہار کے ایک ضلع سے ہوتے ہوئے سے وہاں پر پہنچنا کابل پہنچنا میری نظر میں ایک بہت بڑا خطرہ ممکن ہے کہ ہو سکے مستقبل میں داعش کی, حالانکہ یہ والا ریجن جو ہے یہ والا خطہ جو ہے یہ داعش کے لیے اس طرح موضوع نہیں ہے جس طرح کے عرب ممالک ہے, لیکن یہاں پر سوچنا بھی پڑے گا جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے, میری نظر میں اب سوچنا پڑے گا جس طرح طالبان نے آج اس کی وہ ڈینائی کیا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے یہ ایک سازش ہے آپ یعنی لوگوں کو لڑنے میں, افغان حکومت کے لیے بھی ایک سوچنا پڑے گا اور ان ممالک کے بھی سوچنا پڑے گا, طالبان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں, کسی طریقے سے امن کی طرف آتے ہیں, کسی طریقے سے جو افغانستان میں جو حالات ہے اس کی طرف. اگر
تو کیا اس کو ایک بنیادی اشارہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ امن کی طرف یا مذاکرات کی طرف آنا چاہتے ہیں طالبان کے اس بیان کو؟
میری نظر میں مذاکرات کے لیے کسی نے
جی
ناگرکا نے کسی نے سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی, اگر کوشش کی جائے طالبان قطر سے اپنا وقت بھیجتے ہیں پاکستان سے کہ کچھ مذاکرات کے حوالے سے بات کی جائے, تو وہ وقت طالبان نے مارچ میں کیوں نہیں بھیجا؟ پاکستان اگر طالبان کو قطر کے دفتر سے اپریل میں ان کو دعوت دیتے ہیں یا ان پہ پریشر ڈالتے ہیں یا ان کو کنوینس کرتے ہیں تو پاکستان نے یہ کم ممالک میں طالبان کو باضابطہ طور پر دعوت دی تھی, یہاں پر خرابیاں کمزوری ہیں ان پالیسیوں پہ سنجیدگی کرنی پڑے گی. اگر طالبان امریکہ افغانستان اور چین بھی اگر یہ لوگ کسی طرح نہیں
خان صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے, आपकी आवाज़ हम तक बहुत डिस्टॉर्शन के पास पहुंच रही है, लेकिन आपका एनालिसिस रजिस्टर हुआ, काफ़ी हिस्सा हम उसका अच्छे तरीके से सुन सकें। आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चौधरी नुमान जफर, आपके भी हम मशहूर हैं। किरण हमारे साथ रहिएगा, जो तुर्की, इस वक्त आप तुर्की में मौजूद हैं, वहाँ पर कुछ डिवेलपमेंट्स का क्विक एनालिसिस हम आपसे लेंगे चंद सेकेंड की एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम खत्ता के हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूआत पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है। जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा पसंदता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urdu letters@voanews.com। खत आपके। प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन, प्रोड्यूसर हैं गुलरुख, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे तुर्की पाकिस्तान से गोलन तहरीक के रेफरेंस में किस तरह की मदद चाहता है। तुर्की ने इससे पहले अमेरिका से कह रखा है कि फतहउल्लाह गोलन, जिसको तुर्की ये समझता है कि तुर्की के अंदर नाकाम फौजी बगावत का एक बुनियादी इंस्पिरेशन है वहाँ से, और वो उनके हामी थे जिन्होंने ये बगावत बपा करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुई। एक तरफ तो वो वहाँ पर इंगेज कर रहा है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर 3 महीने के लिए हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। बड़ी पैमाने पर हम कांट छांट देख रहे हैं, बड़े पैमानों पर लोगों की गिरफ्तारियाँ देख रहे हैं जिनके ऊपर शुबा है कि वो गोलन के वफादार या उनके लॉयलिस्ट हो सकते हैं। ये सूरत हाल तुर्की के लिए हालात पे काबू पाने में कितनी मददगार हो सकती है, दूसरी तरफ इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स के एतबार से और इंटरनली सदर तैयब अर्दोगान और उनकी हुकूमत के लिए कितनी चैलेंजिंग भी हो सकती है, सवालात भी पैदा कर सकती है, और पाकिस्तान किस नौयत की मदद दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि कम अज़ कम ऐसे 20 तालीमी इदारे हैं जो फतहउल्लाह गोलन की तहरीक हुरमत चला रही है और उसके तहत पाकिस्तान में ये इदारे काम कर रहे हैं। तुर्की के पाकिस्तान के अंदर सफीर, उन्होंने ये कहा है कि इन इदारों की सरगर्मियों पर नज़र रखी जाए। पाकिस्तान का ये कहना है कि वो ऑफिशियली तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के एक सिटिंग गवर्नमेंट के अहदेदार ने, मिनिस्टर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की है और उनका यह कहना है कि पाकिस्तान ज़रूर अपने मफादात पर नज़र रखते हुए इस पर काम करेगा। मुश्ताक अहमद मेर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफीर हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। किरण नाजिश पहले से हमारे साथ मौजूद हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट रिसर्चर विद न्यू अमेरिका थिंक टैंक के साथ हैं और इस वक्त तुर्की के अंदर मौजूद हैं और बहुत सारा आंखों देखा हाल वो मुख्तलिफ बड़े मीडिया चैनल्स को रिपोर्ट भी कर रही हैं। किरण, सबसे पहले आप बताइएगा, गालबन इस नाकाम फौजी बगावत के दिन या उसे एक आध दिन पहले या बाद में आप तुर्की पहुंची हैं, अब तक हुकूमत अर्दोगान की हुकूमत किस हद तक कंट्रोल करने में कामयाब रही है, एक बात, और ये जो अरेस्ट हैं या गिरफ्तारियाँ हैं ये कितनी प्रोडक्टिव या काउंटर प्रोडक्टिव हो रही हैं, और इमरजेंसी का निफाज हालात को मामूल पे लाने में किस हद तक मददगार हो रहा है?
जी, इमरजेंसी का जहां तक ताल्लुक है तो इमरजेंसी जो है वो तो उस अरेस्ट पहले ही शुरू हो चुकी थी और इमरजेंसी बाद में नाइस की गई है। इमरजेंसी जरूरी थी क्योंकि जो जितनी भी अरेस्ट हम लोग देख रहे हैं वो ज्यादातर यूनानिमस अरेस्ट हैं, ठीक है। पहले से टर्की, जो मेरी सोर्सेज हैं उसके मुताबिक पहले से टर्किश गवर्नमेंट, जो AKP गवर्नमेंट है, उनको पहले से, उनके पास इंटेल्स काफी महीनों से जमा हो रही थी कि कौन से ओपोनेंट्स हैं गवर्नमेंट के और कौन से खतरनाक जिनसे उनको खतरा है AKP डेमोक्रेसी को, AKP पार्टी को। तो इनके पास पहले से लिस्ट थी, इसीलिए आपने देखा कि नेक्स्ट डे से ही फॉरन से अरेस्ट जो है वो शुरू हो चुकी थी और अब तक जो है 70,000 से ऊपर जा चुकी हैं जितने भी अरेस्ट हुई हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, जिसके अंदर लॉयर्स, पुलिस ऑफिसर्स और बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शामिल हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स शामिल हैं। तो ये जो अरेस्ट हैं it's really hard to say. I'm Amnesty International Human Rights Watch ने जो है फौरन से दो दिन पहले अभी actually reports publish किए हैं. Emergency से पहले उन्होंने reports publish किए हैं जिसके अंदर उन्होंने ये बहुत clearly कहा है कि काफी हद तक human rights abuses
रिपोर्ट हो रहे हैं. तो किरण, जो ज्यादातर मेजोरिटी है लोगों की, वो सेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट के एकदम से, या इवन अगर वो तुर्क सदर के सपोर्टर भी हैं, तो क्या उनके अंदर भी अनरेस्ट है इन इनिशिएटिव से?
देखिए, पहली बात ये कि अभी फिलहाल तुर्की इज वेरी यूनाइटेड. जितने भी तुर्की में जितने भी इवन ओपोनेंट्स जो हैं, उन्होंने आके प्रेजिडेंट अर्दोगान को सपोर्ट किया है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग आके सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि कूस उनको इवन दो कि अगर वो अग्री नहीं करते, अर्दोगान की पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं. लेकिन साथ ही साथ में अंडरलेइंग फियर एक काफी कम्युनिटीज के अंदर है, जो सेक्युलर कम्युनिटीज हैं, वो काफी फियर है उनके अंदर. और बहुत सारी, मुझे पर्सनली, मेरी बहुत सारी सोर्सेज हैं जिनसे मुझे पता चला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेक्युलर्स हैं, उनका कोई लिंक नहीं है गुलेन के साथ, और उनकी अरेस्ट की वजह से लोग जो है जनरली काफी डरे हुए भी हैं, जो प्रो एकेपी लोग नहीं हैं, जो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, और जो एंटी कू प्रोटेस्ट में आए हैं. रोजाना यहाँ पर रोजाना प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रोजाना डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं इस्तांबुल और अंकारा में. तो ये जो लोग आते हैं रोड पे, उनमें काफी लोग जो है वो कर्ड्स भी हैं, और दूसरे एथनिसिटीज और पॉलिटिकल व्यूज से उनका बैकग्राउंड है, जो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि ये जो एमरजेंसी नाफिज की गई है, इसके अंडर अरेस्ट जो है उसके लिए कोई वारंट अप्रूव और एविडेंस की जरूरत नहीं है. और दूसरी बात है कि ये भी पता नहीं कि ज्यादातर जो थाउजेंड्स ऑफ लोग जो अरेस्ट हुए हैं और जो जारी हैं, वो कहाँ, कोई पर्टिकुलर लोकेशन जो है वो डिफाइन नहीं है. जनरल लोकेशन के बारे में हम लोग को पता है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ पर लेके जा रहे हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या इंटरोगेशन है, और क्या
ये वजह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं. बहुत शुक्रिया आपका किरण आजिश, आपने हमें तुर्की से ज्वाइन किया. मुश्ताक अहमद मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं. मेहर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. एक तो तुर्की की सूरत हाल पे आप अपना एनालिसिस दीजिएगा, अब तक जो सूरत हाल इमर्ज हुई, एक बात. और दूसरा, तुर्की जो ये कह रहा है कि गोलन तहरीक के हवाले से भी पाकिस्तान, उनके जो इदारे हैं उस पर नजर रखे, पाकिस्तान कैसे हेल्प कर सकता है गोलन की तहरीक को, तहरीक के पस मंजर में अपने अंकरा की या रजब तैयब अर्दोगान की हुकूमत की, जो थोड़ा क्लोज है पाकिस्तान के साथ? मेहर साहब
जी, आपसे मुझे पूछा.
जी जी, आपसे
जी. जी, बात यह कि तुर्की के जो लोग हैं बड़े सख्त लोग हैं, ये सेंट्रल एशियंस हैं और ये तातारी हैं, और इनकी जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो बे इंतहा बहादुर और बहुत ही स्ट्रांग किस्म के लोग हैं. तो ये जो नाकाम कुदेता हुआ है, इसकी रेमिफिकेशन बहुत लॉन्ग टर्म होंगी, ये बड़ी आसानी से साल नहीं होगा. तुर्की में एक मेजर प्रॉब्लम है कि जो अर्बन एरियाज हैं उसमें तो ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है तैयब अर्दोगान की, उसमें काफी पॉपुलैरिटी है, क्योंकि वो प्रो बिजनेस है और उसमें डेमोक्रेसी है. लेकिन जहाँ तक उनके रूरल एरियाज का ताल्लुक है, जहाँ तक उनकी पेरिफेरी का ताल्लुक है, उसमें उनको इतनी पजीराई हासिल नहीं हुई. और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वहाँ पे कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग है, तो 25-26 मिलियन से ज्यादा ट्रेंड सोल्जर्स हैं, तो रेजिस्टेंस जो है वो भी बहुत एक्सपेंसिव होगी. जहाँ तक आपने सवाल किया कि ये जो गवर्नमेंट है वो कामयाब होगी कि नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि तुर्की में बहुत मुश्किल होगा कि सिर्फ सप्रेशन से, सिर्फ यूज ऑफ फोर्स से, या सिर्फ रिट ऑफ गवर्नमेंट से ये मसाइल हल हो सके. तैयब अर्दोगान साहब को मेरे ख्याल में किसी ना किसी स्टेज पे पॉलिटिकल कंप्रोमाइज पे जाना पड़ेगा.
सही.
और वो जो डिसिडेंट्स हैं और वो जो मूवमेंट्स हैं उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, ये इतनी जल्दी नहीं होगा.
अब पाकिस्तान की तरफ आइए, पाकिस्तान किस तरह मदद कर सकता है जो पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं?
1970 से एसोसिएट मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, और यूरोपियन खासतौर पे जर्मनी और फ्रांस के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ह्यूमन राइट्स का भी वो बहुत ख्याल रखती है. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نئے قبرستان بنائیں گے, ہم لوگوں کو پھانسی دیں گے, تو یہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے نہیں ہو سکے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بیلنس ویو لے. آف کورس ناکام جو ملٹری کودتاز ہوتے ہیں اس کے ریپرکشن ہوتے ہیں, اس کے ریمیفیکیشن ہوتے ہیں, لیکن یہ ترکی کے اندر جو کودتا ہوا ہے اب یہ لگتا ہے کہ بہت ایکسپینسو تھا. میرا پہلا خیال تھا کہ یہ سب ایئر فورس اور کوئی ٹاپ کے ریٹائرڈ جنرل ہے, لیکن اب یہ لگتا ہے کہ یہ یا تو پھیل رہی ہے ایز اے پبلک موومنٹ یا یہ شروع سے پلان ایسی تھی. تو یہ چند
اب ذرا کوئکلی آئے گا پاکستان کی جانب, پاکستان کیسے مدد کر سکتا ہے, جس طرح
اسے بہت کیئرفل ہونا پڑے گا.
جو 20 ادارے بتایا جاتا ہے کہ ان کی تحریک حرمت کے زیر تمام پاکستان میں چل رہے ہیں اور پاکستان سے مدد چاہی گئی ہے, پاکستان کیا مدد کر سکتا ہے, یہ ترکی کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اس ریفرنس میں پاکستان سے؟
جی یہ بڑا عجیب بات ہے. میں کوئی 2-3 سال پہلے یا اس سے پہلے میں نے پی ٹی وی پہ ایک انٹرویو پہ گیا تھا, تو وہاں پہ یہ جو ان کے اسکول ہیں گولن صاحب کے, ان کے جو کوآرڈینیٹر تھے وہ ان کے ساتھ تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ٹرکش اسکول پاکستان میں کیوں لے کر آئے ہیں, وہ استنبول سے آئے تھے, اب وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ ایجوکیشن چونکہ نہیں تھے تو ہم نے ایجوکیشن میں پاکستان کی مدد کی ہے, اور انہوں نے ٹرکش اسکول زیادہ تر بلوچستان میں کھولے ہیں, اور زیادہ تر انہوں نے ان ایریاز میں کھولے ہیں جہاں پہ پاورٹی زیادہ ہے, اور یہ ان کو ایک ٹرین کر رہے تھے اسی طریقے پہ جیسے انہوں نے ترکی میں اپنے لوگوں کو ٹرین کیا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف آپ نے پروٹیسٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ جو حرمت موومنٹ ہے اس کے کافی حد تک اثرات نظر آتے ہیں پاکستان میں, اور اب حکومت پاکستان کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جو ٹرکش پرائیویٹ اسکول آئے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں اور بہت ریسورسفل اسکول تھے, تو اب یا انہیں بند کرنا پڑے گا اور یا جو بچے گریجویٹ ہو رہے ہیں ان پہ نظر رکھنی پڑے گی.
جی بہت شکریہ مشتاق احمد میر صاحب, سابق سفیر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کرن نازش آپ ہمارے ساتھ تھیں, نیو امریکہ تھنک ٹینک سے وابستگی ترکی سے آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور امریکہ کی پالیٹکس پہ, امریکہ کی سیاست پہ بات کریں گے.
عمران تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم. پروگرام کے یہ آخری لمحات ہیں, دو سیگمنٹس ہم نے اس میں کور کرنے ہیں, لیکن کوئکلی ہم بات کریں گے پاکستان امریکہ کی سیاست کے اوپر. ریپبلکنز پارٹی ان کے کنونشن کے بعد باقاعدہ نامزدگی ہو چکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اپنی پریزیڈنشیل اپنی وہ سپیچ بھی دے چکی ہے اس میں اندر, جس کے اندر فوکس ان کا یہ تھا کہ امریکہ کو دوبارہ عظیم تر بنانے کی ضرورت ہے, امریکہ کو دوبارہ مضبوط تر بنانے کی ضرورت ہے. اور اب بہت سارے ماہرین کے نزدیک ان کے جو پولیٹیکل ریٹرکس تھے اس سے بات آگے ہے, جہاں پہ انہیں ایک پریزیڈنشیل میٹیریل کے طور پہ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اور اس ریس کے اندر اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہے. ابھی جو بنیادی اشارے ہیں اس میں دونوں باتیں آ رہی ہیں. بہت سارے ماہرین کے نزدیک ڈونلڈ ٹرمپ ایک بدلتی ہوئی ایسی شخصیت کے طور پہ امرج ہو رہے ہیں جو شاید پریزیڈنشیل میٹیریل ہے اور اپنے آپ کو ایک طاقتور صدارتی امیدوار کے طور پہ وہ سامنے لا رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب یہ ہے کہ جب بات ہوگی فارن پالیسی کی یا فارن پالیسی اور پھر انٹرنلی امیگریشن کے ایشوز کے, ان کے جو ریٹرکس ہیں شاید انہیں ووٹرس کے اندر, خاص طور پہ امیگرینٹس ووٹرس کے اندر وہ مقبولیت نہ دلا سکیں, اور اگر وہ ظاہر ہٹتے ہیں تو بھی یہ پولیٹیکلی کچھ اچھا نہیں ہوگا. دوسری جانب جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ہلری کلنٹن نے جو کہ متوقع امیدوار ہیں آئندہ ایک دو روز میں جب کنونشن میں ان کی نامزدگی متوقع ہے, انہوں نے اپنے رننگ میٹ کا اعلان کر دیا ہے. ورجینیا سے سینیٹر کین جو کہ گورنر بھی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ بڑی زبردست شہرت رکھتے ہیں, کبھی الیکشن نہیں آ رہے ہیں, اس کے علاوہ ایک ماڈریٹ امپریشن ہے ان کی پرسنالٹی کا کئی ایک ایشوز پہ, اور یہ کہ امیگرینٹس کے بارے میں بھی سافٹ کارنر رکھتے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ ریپبلک ریپبلکنز کے لیے ڈیموکریٹس کے لیے کتنی اچھی ہے, رننگ میٹ کے لیے چناؤ ان کا کتنا اچھا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا کتنا اچھا ہے, کوئی انالیسز ہم لیں گے. پہلے ذرا پارٹیزن بات ہو جائے اور اس کے بعد پھر انڈیپینڈنٹ انالیسز. طاہر روہیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈیموکریٹ ایکٹیوسٹ, فاؤنڈر ممبر ہیں پاکستانی امریکن ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے, اور ہمارے ساتھ ہیں اعظم اختر, ریپبلکن پارٹی کے ساتھ اپنی سیاسی وابستگی رکھتے ہیں, ان کے لیے ایکٹیوسٹ ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اعظم اختر صاحب, آپ بتائیے گا, ڈونلڈ ٹرمپ نامینیشن لے لی لیکن اب صدارتی آفس یا وائٹ ہاؤس کا راستہ کتنا کٹھن ہے, اور آپ کے خیال میں ان کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا, کیسے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے لیے یا اپنے آپ کو گیئر اپ کرنے؟
شکریہ آپ کا مجھے لینے کا. میرا نام اعظم اختر ہے, ہیوسٹن سے ہوں. یہاں تک ڈونلڈ, آپ نے اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کلاس ایکسکلوژن کی ایکسیپٹنس کی سنی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی ٹون اگر ڈفرینٹ تھی, جو شروع میں وہ بہت ہارش تھے جب اپنی نامینیشن کے لیے کمپین چلا رہے تھے, تو اس وقت ان کے ساتھ 13-14 کینڈیڈیٹ تھے اور دے آل ٹرائنگ دے ہارڈ اینڈ بیسٹ, سو ہی از ٹرائنگ ہمسیلف ٹو, کیونکہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا تھا پہلے, اور اسٹیبلش کرنے کے لیے ہر ایک کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, اور کچھ اس کو اور اس کو لوگ کچھ اپیل کر لیتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. ان کا جو ایجنڈا تھا پاپولر ایجنڈا تھا اور کامن پیپل کے فیور میں تھا,
صحیح.
اس کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹون جو بھی تھی بڑی ہارش تھی شروع کے اندر, اور جس کی وجہ سے بہت لوگ انکمفرٹیبل ریپبلکن پارٹی میں بھی ہوتے تھے اور ان جنرل بھی ہو رہے تھے.
اب پارٹی متفق ہے, پارٹی کے اندر آپ کو لگتا ہے یونٹی ہے ان کو سپورٹ کرنے؟
اب اگر آپ نے دیکھیں, رون پال صاحب جو تھے انہوں نے, جو اسپیکر صاحب ہیں وہ پہلے ان کے بہت زیادہ مخالف تھے, اینڈ از کمنگ ٹو کلوز ٹو ہیم, سیم تھنگ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی اپنے, انہوں نے بھی ان کی طرف فیور کیا, میجورٹی لیڈر جو ہے ریپبلکن میں صاحب. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ دیکھیں اگر آپ ان کی ٹیڈ کروز کی آپ دیکھیں, ان کی جو ٹون تھی وہ بھی زیادہ ڈفرینٹ تھی, انہوں نے انڈورس نہیں کیا, لیکن اگر ابھی دیکھیں ہی از کمز پہ, سیم تھنگ ود روبیو صاحب سینیٹر روبیو, انہوں نے بھی ہی از ٹاکنگ ان فیور. تو جیسے آپ دیکھیں ایسا ایسا ٹیکس ٹائم, ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس 3-4 مہینے ہیں, تو آئی تھنک دا وے ہی ٹاکس ان دا ایکسپریس اسپیچ, اس کے اندر جو بھی ایشوز آئے, ڈفرینٹ ایشوز ہیں ان کو اس کو انہوں نے
ڈیل کیا, اور آپ کے خیال میں وہ باقی جو جو ناراض فیکٹر ہیں ان کو بھی وہ انگیج کر لیں گے؟ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ بتائیے گا, ہلری کلنٹن ان کی چوائس کیسی رہی نائب صدر کے عہدے کے لیے, کتنی مددگار ہو سکتی ہے ان کو وائٹ ہاؤس تک پہنچانے میں؟
جی میرے خیال میں بہت مددگار ہو سکتی ہے. یہ جو سینیٹر کین صاحب ہیں یہ اسپینش بہت اچھی بولتے ہیں, فلوئنٹ بھی بولتے ہیں, اور پوری تقریر جو ہے وہ کر سکتے ہیں اسپینش میں, اور اسپینش لوگ جو ہیں ان کے خلاف جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو نفرت انگیزی کی ہے اس کے لیے اسپینش اسپیکنگ لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ بہت اہم ہیں, اور ان چاہیے یہ کہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالیں, تو اس کے لیے یہ جو ان کا انتخاب ہے کین صاحب کا, سینیٹر کین صاحب کا, وہ بہت اہم ہے. اس کے علاوہ وہ کیتھولک ہیں, اور اس کے علاوہ وہ پرو ابارشن ہیں, اور ہلری کلنٹن کی جو پرو امیگریشن سچویشن ہے یا ان کے جو ایجنڈا
پرو ابارشن سمرادی کا, ان کا سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن خواتین کو یہ رائٹ دینے کے حق میں ہوں. جی تھوڑی کلیئر,
تو وہ بات تو وہی آ گئی نا,
جی بالکل, پالیسی وائز
یہ کلنٹن کے جو پروگریسو آئیڈیاز ہیں یہ کین صاحب جو ہیں اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور دوسرا یہ کہ ان کو بہت تجربہ ہے, اور اپنے آپ کو یہ کیمپین کلنٹن اور کین کیمپین جو ہے وہ اس طرح سے پوزیشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ غصے کی باتیں کرنا, نفرت کی باتیں کرنا, تقسیم کی باتیں کرنا, اور باہر بیٹھ کے نعرے بازی کرنے والا کیمپ نہیں ہے. ان لوگ ایسا کیمپ ہیں جو تجربہ رکھتا ہے, اور دونوں جو ٹکٹ ہیں صدارتی امیدوار اور نائب صدارتی امیدوار دونوں کو بہت حکومت کا تجربہ ہے اور لوگوں کو ساتھ.
تو آپ کے خیال میں یہ مددگار رہے گا؟ اس کے علاوہ ان کی پروفائل میں یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ جو فارن ریلیشن کی کمیٹی ہے اس کا بھی حصہ رہی ہیں, عام سروسز کمیٹی کا, تو تھوڑا ڈیفینس اینڈ فارن افیئرس میں بھی تھوڑا گرپ نظر آ رہی ہے, دونوں پارٹیوں کا نقطہ نظر آیا. بہت شکریہ آپ کا, ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, اعظم اختر صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. علی عمران صاحب ہمارے پاس, معافی, آج ہم آپ کو کم وقت دینا چاہیں گے. کوئکلی آپ نے دونوں پارٹیوں کا ورژن سنا ہے, دونوں طرف سے میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, آپ ہمیں اپنا انڈیپینڈنٹ انالیسس دیجئے گا, دونوں امیدواروں کی ڈائریکشن کیا ہے, کتنا وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہیں, اور کہاں کہاں ان کے سامنے ویکنسز ہیں ان کے کیمپس کے اندر؟
جی شکریہ حسن, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے ایجنڈے پہ برقرار ہیں, और हम जो समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन कन्वेंशन में शायद कुछ ऐसी बातें करें कि जो पहले उन्होंने एक हाइप क्रिएट किया था और रेटरिक जो यूज किया था मुसलमानों के खिलाफ और स्पेनिश और दूसरी कम्युनिटीज के खिलाफ, तो उन्होंने वो कोई ऐसी बात नहीं की।
सही।
उन्होंने सिर्फ एक तरफा यक तरफा एक एजेंडा दिया अपना, और उसमें पूरे अमेरिका का जो एक असिमिलेटेड और एक मल्टीकल्चरल अमेरिका है उसकी बात नहीं की।
सही।
अब दूसरी तरफ हिलरी क्लिंटन ने जो अभी चूज किया टिम केन को, तो वो एक बैटल ग्राउंड एक स्टेट है और टिम केन जो है वो बैटल ग्राउंड पॉलिटिक्स में तजर्बा रखते हैं और वो मिडिल क्लास से ग्रो करके ऊपर आए, उन्हें बहुत ज्यादा तजर्बा है और इस तजर्बे से यकीनन हिलरी क्लिंटन को फायदा होगा। और दूसरी तरफ मैं आज आपकी तवज्जो एक वाशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल की तरफ कराना चाहता हूँ, जिसमें उसके एडिटर्स ने ये करार दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो उन्होंने अमेरिका के मिसाइल की तशखीस की है और जो उसका हल पेश किया है वो तमाम गलत हैं और वो एक अमेरिका के आइन को एक थ्रेट के तौर पे देखा है उनको इस एडिटोरियल में।
सही।
और इस हाँ, और इसलिए ये जो अभी हालात चल रहे हैं तकरीबन वो उन्होंने उसी प्राइमरी सीजन की जो रेटरिक था उसको बरकरार रखा है, जो कि जबकि ऐसा समझा जा रहा था कि वो उस एक नैरो जो अप्रोच थी उससे निकल के एक बड़े असिमिलेटेड और बड़े अमेरिका की बात करेंगे, ब्रॉडर लेवल पे बात करेंगे।
सही।
तमाम कम्युनिटीज की बात करेंगे और इंटरनेशनल जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि अमेरिकनिज्म ओनली और नो टू ग्लोबलिज्म, और ये भी एक ऐसा मैसेज दिया। फिर नेटो को जो उनका मैसेज गया वहां पे भी बड़ी इस पे तशवीश पाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अमेरिका, तो अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है और इतना बड़ा मल्टीकल्चरल और इतनी इसकी फॉरेन पॉलिसी और इतनी स्वीप और इसका इंटरेक्शन जो दुनिया के साथ इतना लगा हुआ है और इतना एक जुड़ा हुआ है जो कि अलग हो ही नहीं सकता, और अमेरिकन जो
ठीक है, तो यानी थोड़ा सा उनके पास आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। आखिरी कुछ मोमेंट्स हैं, क्विकली हम जाएंगे, नजर डालेंगे भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर उसकी सूरत हाल पे। तकरीबन 15वां दिन है, 2 हफ्ते हो चुके हैं, वहाँ पे वायलेंट क्लैशेज, एहतजाजी तहरीक जारी है, सिक्योरिटी फोर्सेज और उनका कर्फ्यू उसके अंदर भी वसत नजर आ रही है, और इन हालात को नॉर्मल बनाने के लिए भारत के फेडरल इंटीरियर होम मिनिस्टर यानी जिसको वजीर दाखिला कहते हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने वहां पे कश्मीर का दौरा किया है। इतवार तक उनका यह दौरा है, वहां पे वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज के साथ, मसाजिद के इमामों के साथ, लोकल पुलिस के साथ और लोकल कम्युनिटी अराकीन के साथ, वो मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ बातचीत कर रही हैं और उनको इनवाइट कर रहे हैं कि उन्हें मशवरा दिया जाए कि कैसे हालात को काम डाउन किया जा सकता है। बाहर एक अच्छी कोशिश है, बहुत सारे कम्युनिटी के अराकीन ने उनसे मिलने से इनकार भी किया है। एनालिसिस भी हम लेंगे, हमें प्रताप सोमवंशी साहब ज्वाइन करेंगे, एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, लेकिन दीपक दोबल हमारे साथी हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उर्दू सर्विस के और इस वक्त कश्मीर में मौजूद हैं, उनसे हम मालूम करते हैं कि उन्होंने अब तक क्या देखा है। उनकी ओपिनियन तो इंडिपेंडेंट है, वहां पे लोकल अफराद के साथ और लोकल कम्युनिटी के लोगों के साथ वो मिल रहे हैं। दीपक, आप अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कीजिएगा हमारे साथ, अभी तक जो हालात आपने वहां पे मुशाहदा किए हैं पिछले 2 दिनों में।
हाँ, 2-3 बातें उसमें बहुत मतलब साफ है जो कि हर किसी को मालूम है। एक ये कि लोकल जो लोग हैं वहां पे, जो कश्मीरी हैं, वो सख्त नाराज हैं इंडियन गवर्नमेंट से, बहुत ज्यादा नाराज हैं। अब दूसरी बात ये कि जो ये जो एक जनरेशन है जो इस वक्त फोरफ्रंट पे है, जो कि आप जितने भी क्लैशेस पुलिस के साथ देख रहे हैं, इसमें यंग लड़के बहुत ज्यादा आगे निकल कर आ रहे हैं।
सही।
और ये बात देखी गई है कि जो ये यंग लड़के हैं ये 1990s में या तो पैदा हुए या बड़े हुए, तो इन लोग और 1990s जो था वो कश्मीर में सबसे तशद्दुद का सबसे बड़ा बुरा दौर था, उस समय मिलिटेंसी अपनी हाइट पे थी और उस वक्त हजारों लोग मरे थे, तो इन लोगों ने वायलेंस बहुत ज्यादा देखा है। तो जो ये लड़के जो इस समय इस पूरे मूवमेंट को चला रहे हैं वो पुलिस से जिस तरीके से वो क्लैश कर रहे हैं, और पुलिस को भी पैलेट गन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है और दूसरे असले का भी, जिसकी वजह से 50 लोग मारे गए। तो और दूसरी बात ये है कि जो ये लड़के हैं नए, इनको जो पुरानी लीडरशिप रही है जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रही है, वो बहुत ज्यादा इन लड़कों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये लोग अब जो पुराने लीडर्स हैं, जो नई जनरेशन है, वो उनसे इतना आइडेंटिफाई नहीं करते हैं अपने आप।
ठीक है, तो क्या ये उस रेफरेंस में अगर हम देखें तो क्या ये क्राइसिस है, यानी जो जब लीडरशिप के यानी ये तो फिर एक मॉब हो गया जिसकी लीडरशिप नहीं है, तो उस सूरत में जो इंगेज करने की एफर्ट्स होती हैं वो हिस्टोरिकली, वो सिर्फ इस रीजन की हम बात नहीं कर रहे, दुनिया में कहीं भी, वो कितनी कामयाब रहती हैं?
یہی ایک سب سے بڑی مشکل ہے. دیکھیے اس وقت جو پرانے کشمیری سیپریٹسٹ الگاوادی لیڈرز جس کو ہم کہتے ہیں سیپریٹسٹ لیڈرز ہیں
جی.
اور وہ اس میں ایسی کوئی کال نہیں دے سکتے کہ کل سے آپ بند ہو جائے یا اس کو معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے. وہ ایسی جی. کال دینے میں ڈر رہے ہیں اگر آپ لوکل لوگوں سے بات چیت کریں
صحیح.
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو ینگ لڑکے ہیں
وہ بات نہ سنیں,
اس کال کو بالکل نہ مانیں
جی. بہت شکریہ آپ کا دیپ دوبل, آپ نے ہمیں انڈیپینڈنٹ جو آپ کا مشاہدہ تھا اس سے آگاہ کیا. ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا باقی انالیسز کے لیے, تو پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھیں اس پروگرام کی جہانگ کی گلرخ, اور ہمارے ساتھ انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھی, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.